Hare Rama,
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare,
Rama Rama, Hare
Hare. Hare Krishna. किसका निवास स्थान है? क्या नाम?
योग
निलय. योग निलय प्रभु श्रीमंती श्री श्रीमंतनी तो श्रीमंतनी माता जी और योग निलय प्रभु जी के निवास स्थान पे आज राधा माधव राधा मदन मोहन ललिका विशाखा के साथ आज 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 मंदिर का किया है स्थापना. बहुत अच्छा. तो नए मंदिर की स्थापना की है 25 जनवरी 2012 में. और फिर आप सबको भगवान के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत का कानों के द्वारा दर्शन. भागवत भगवान का स्वरूप है. वांगमय स्वरूप मतलब शब्द स्वरूप है और उसका दर्शन करना कान से होता है. तो आपको अवसर दिया है मौका दिया है भागवत के श्रवण करने का और आपका इस परिवार का धन्यवाद करते हैं आपका स्वागत करते हैं. हरे कृष्ण. तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले और दूसरे अध्याय के ऊपर चर्चा चल रही है. भागवत में भगवान को जानना भागवत का लक्ष्य और उद्देश्य है. भागवत का लक्ष्य और उद्देश्य भगवान को जानना है. और जानने के बाद भगवान की सेवा में लगना है. कैसे लगना है? जैसे भागवत में भगवान के प्रेमी भक्त भगवान की सेवा करते हैं वो उदाहरण दिया गया है और वैसे भगवान की सेवा में लगना है. तो पहले भगवान क्या है इसकी जानकारी है. फिर भगवान की सेवा कैसे की जाती है. फिर एक्सपेरिमेंटली जो सेवा करते हैं भगवान की सेवा में पहले लगे हुए हैं उनका दर्शन भी है ताकि हमको सेवा करने में आसानी हो. तो एक एक पूरा सेवक भगवान के बहुत से सेवकों का दर्शन है. जानकारी के लिए पहले आवश्यकता है जिज्ञासा की. इसलिए भागवत में पहले जिज्ञासा है जानने वालों की इच्छा. पूछने के ऊपर बताने से बात याद रहती है. अपने आप किसी के ऊपर कुछ जबरदस्ती थोपने से बात हृदय में उतरती नहीं है. तो जो शास्त्र की शैली है पूछेगा कोई जिज्ञासा पैदा होगी तो फिर उसको सुनेगा तो वो समझ में आएगा. प्रचार में जिज्ञासा पैदा करनी प्रचारक का उद्देश्य होना चाहिए ताकि सुनने वाले को अधिक जानकारी के लिए प्रश्न करना चाहिए. इसलिए पूछना प्रश्न करना जिज्ञासा ये महत्वपूर्ण है. जिज्ञासा बताती है कि आप सुनना चाहते हैं. वैसे सत्संग का अनाउंसमेंट करना और घर से निकल के आना ये भी जिज्ञासा है. बगैर पूछे सुनने के लिए आना ये जिज्ञासा है. ये जिज्ञासा है. और इस जिज्ञासा को भगवान इतना प्रसन्न होते हैं, सुश्रुता तत्क्षणात, सुनने की इच्छा घर में की आपने और भगवान हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठ जाते हैं कि ये मेरी कथा सुनने जा रहा है। इसका अर्थ है जिज्ञासा भगवान को आकर्षित करती है। हमारी जिज्ञासा भगवान के विषय में भगवान को आकर्षित करती है। जैसे अभी कोई आप बाहर खड़े हो और आपका नाम लेके कोई कहे कि अरे रोज आता है, आज क्यों नहीं आया, तो आप बाहर, आपको कैसे लगेगा, अरे मैंने को याद कर ले। आपका नाम ले और आप बाहर से सुन लो तो आप अट्रैक्ट होते हो कि नहीं होते उस तरफ? जो आपका नाम लेता है उसकी तरफ आपका आकर्षण जाता है कि नहीं? कौन मेरे को याद कर रहा है? जैसे आपके मन में ऐसा आता है कि मुझे कौन याद कर रहा है, ऐसे भगवान भी कहते हैं अरे मेरी कथा सुनने कौन जा रहा है। तो भगवान को, हमारी जिज्ञासा भगवान को आकर्षित करती है। तो जिज्ञासु बनना है, तो ये जिज्ञासु यहां कितने हैं? जिज्ञासु यहां 88,000 जिज्ञासु है। इसका मतलब जिज्ञासु ज्यादा होने चाहिए। ये इतना बड़ा नंबर इसलिए बताया है कि हमारी कथा में कितने भी लोग आए हमें चिंता नहीं है। ये भागवत कथा में ज्यादा से ज्यादा 88,000 लोग में आए तो भी परेशानी नहीं है। उस वक्त माई कथा के पता नहीं है, इसको आगे पीछे नहीं करना पड़ता था, कैसे सबने सुना होगा। तो इतने लोगों के लिए कैसे सूत गोस्वामी ने, उसके पास क्या सिस्टम रहा होगा। जगह के अंदर भी सुनने के लिए इतने लोग कैसे आवाज सुना होगा। कानों की वाणी बहुत दिव्य रही होगी। असल में सुनने वालों का बाहर का आवाज तो कम होगा, अंदर भी शोर कम होगा। हमारा अंदर का शोर जो है ना, वो परेशान ज्यादा करता है, बाहर के शोर से इतनी परेशान नहीं। वैसे भी घर में लाइट चली जाती है तब शांति देखिए कैसी होती है। असल में लाइट जाने से ज्यादा शांति होती है। अपने महसूस किया है कभी लाइट गई तो कितनी शांति हो जाती है। तो उस वक्त ये कोई बेकार का शोर शराबा था नहीं, तो सुनने के जिज्ञासु को सुनने में आ जाता था। कैसे होगा, उनके पास कुछ होगा तो होगा, लेकिन इतने लोगों ने भी सुना था ऐसे अच्छा था। और एक ये सुनने का दृष्टिकोण है और दूसरा सुनने का दृष्टिकोण, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति बताता है। कृष्ण अर्जुन एक को गीता से बता रहे हैं, चेतन महाप्रभु एक सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे, एक रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे। तो जिज्ञासु एक हो या 88,000 हो, सभी सराहनीय है क्योंकि उनको जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा में प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी से। पहला प्रश्न कल हमने परसों पढ़ा था, पहला प्रश्न एक आसानी से समझने वाला, सब लोगों के कल्याण के लिए श्रेय क्या है। और उसका उत्तर था भक्ति, परम धर्म, परो धर्म, परम धर्म, वो धर्म जो आदमी में परिवर्तन लाए, आदमी के हृदय में परिवर्तन लाए और देखने में आए परिवर्तन, चेंज देखने में आए। धर्म इसका मतलब है कि आप कथा सुन के आए, साधु से मिल के आए, धर्म का आचरण करके आए, तो आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। वैसे कहते हैं साधु संत की परिभाषा ये है कि उसके पास जाने से आपके जीवन बदल जाना चाहिए। और दूसरा, समय वहां ठहर जाना चाहिए, आपको ये पता नहीं लगना चाहिए कितना समय बीत गया। जहां समय में स्थिरता आ जाए और जहां जीवन में परिवर्तन आ जाए, मानो कि वो परम धर्म है। अब देखो आपके जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं आया, ये भागवत धर्म के जीवन में लाने से जीवन में परिवर्तन आया। तो जीवन में परिवर्तन आए और समय रुक जाए का मतलब ये है कि अन्य इम्पॉर्टेंट बातें आस्ते आस्ते आदमी से छूट जाती हैं, बहुत सी चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो उत्तर उसका क्या था, धर्म वो है जो हृदय में, सबके हृदय में भगवान ने प्रेम पहले से भर दिया है, उसको भगवान के लिए जगाए, वो ही परम धर्म है। तो प्रेम सबके हृदय में पड़ा है, ऐसे नहीं कि प्रेम कहीं बाहर से लाना है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नहीं, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, सबके हृदय में भरा हुआ है, बस उसको उदय करना, उसको जगाना, उसको बाहर निकालना, ये धर्म का काम है। और कैसे होगा आगे वही कहेंगे, शुद्ध चित्ते श्रवण आदि, शुद्ध चित्ते श्रवण आदि। जब चित्त शुद्ध होगा, चित्त का मतलब हृदय, हृदय जब शुद्ध होगा, मन जब पवित्र होगा, तो वो प्रेम अपने आप प्रकट हो जाएगा। कैसे मन शुद्ध होगा, श्रवण आदि, श्रवण का मतलब सुनना और कीर्तन का मतलब बोलना, इससे हृदय शुद्ध होगा तो वो प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो उससे लाभ क्या, आत्मा सुपरसीदति, आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। कर्म से शरीर को संतुष्टि मिलती है, ज्ञान से मन को संतुष्टि मिलती है, लेकिन भक्ति से आत्मा संतुष्ट होती है। तो इसलिए आत्मा की संतुष्टि कर्म और ज्ञान से नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म से शरीर संतुष्ट होता है, ज्ञान से मन, और उससे भी ज्यादा इंटेलेक्चुअली करेंगे तो बुद्धि, इनकी संतुष्टि होगी, लेकिन आत्मा की संतुष्टि इनसे नहीं होगी। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर प्रभुपाद बोलते हुए कहते हैं, ये इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से परे है, बियॉन्ड सेंसेस माइंड एंड इंटेलेक्चुअल, ये आत्मा के स्तर का है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र जो हमारी भक्ति का मूलभूत साधन है, जो मूलभूत साधन हमारी भक्ति का है, जो आत्मा को पूर्ण रूप से प्रसन्न करेगा, वो जो है वो दिव्य स्तर का है, वो मन बुद्धि और इंद्रियों के स्तर से ऊपर का है। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के लिए। तो उस संतुष्ट शब्द को लेकर दूसरा प्रश्न पूछा गया, आत्म सुप्रसिद्धि को लेकर दूसरा प्रश्न पूछा गया, और दूसरा प्रश्न कल हमने पढ़ा था, और ये दूसरा प्रश्न क्या था, बहुत सारे शास्त्र हैं और उसके अंदर बहुत सारे काम बताए गए हैं, मंत्र भी बहुत बताए गए हैं, कर्म भी बहुत बताए गए हैं, लेकिन आप कलयुग के लोगों के पास न समय है, न इतनी बुद्धि है, न इतने बेचारे भाग्यशाली हैं, इसलिए उन सब का सार क्या है, सब लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए एक चीज अच्छी हो सकती है, लेकिन सब लोगों के लिए सामान्य बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान सबके होते हैं, भगवान सबके होते हैं, तो सब लोगों के, भद्राय भूतानाम, सारे लोगों के भद्र शुभ के लिए सार बताइए, बोले वो सार क्या करना चाहिए, तब वही बात कही, यस ये न आत्मा सुपरसीदते, जो प्रश्न का उत्तर का शब्द था उसी को लेके प्रश्न पूछा गया। तो ये शैली आपको भगवत गीता में भी मिलेगी, जब भगवान कहते हैं कर्म आदि ब्रह्म भूत सब समझेगा, तो अर्जुन पूछता है किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म, तो वही पूछता है। ये जिज्ञासा पैदा करने वाले अच्छे अच्छे अध्यापक, अच्छे गुरुजनों की, अच्छे साधुओं की ये पहचान है कि वो ऐसा शब्द बोलते हैं जिससे दूसरे में जिज्ञासा पैदा हो और पूछे, या ये वो उत्तर दे दिया मानो पहले का, और उन्होंने पूछा वो कैसे होगा। सारे शास्त्रों में बताइए कि आत्मा को भाई कर्म से, हमने जैसे अभी कहा कर्म से तो शरीर की संतुष्टि होगी, ज्ञान से मन की बुद्धि की संतुष्टि होगी, तो आत्मा की तो नहीं होगी। तो आप शास्त्रों के अंदर कर्म भी है ज्ञान भी है सब है, आप हम में से उससे वो बताइए जिसमें से आत्मा परिपूर्ण रूप से संतुष्ट हो। अब तीसरी जिज्ञासा, और इसका उत्तर क्या दिया, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। अब वासुदेव की, भगवान वासुदेव की भक्ति वो करने से जो कर्म और ज्ञान का लक्ष्य है, जो सारे शास्त्रों का लक्ष्य, सारे शास्त्र क्या बताना चाहते हैं कि तुम्हारे को ज्ञान होना चाहिए और वैराग होना चाहिए। शास्त्रों में दो ही उद्देश्य है, ज्ञान और वैराग। तो उसके लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वासुदेव की भक्ति से ये दोनों अपने आप पैदा हो जाएंगे। उसके लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ये भक्ति के पुत्र हैं और अथवा फल हैं, अपने आप हो जाएंगे। अब शब्द क्या बोल दिया उत्तर में, वासुदेव भगवती है ना, तो अब प्रश्न किसके ऊपर होना चाहिए, वासुदेव के ऊपर होना चाहिए। अब देखिए प्रश्न क्या है, अब प्रश्न है 17वां श्लोक पहले अध्याय का प्रश्न है, यस्य कर्माणि उतना भाव, इसके बाद ये 13वां 12वां वो चौथा श्लोक, 12वां श्लोक है, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया। वासुदेव आया ना, मैं कहा वासुदेव की भक्ति, अब उस वासुदेव की कह रहे हैं जो देवकी और वासुदेव के घर में प्रकट हुए, क्या उसकी भक्ति की बात कर रहे हैं, ये जिज्ञासा हो गई ना, उस प्रश्न में ये शब्द समाया हुआ है, तो वासुदेव की भक्ति करनी चाहिए। हाँ अच्छा, तो कौन से वासुदेव, क्योंकि प्रायः वासुदेव को कहते हैं सर्वव्यापक, वासुदेव का एक अर्थ है जो सब जगह व्यापक है, तो उसको बहुत स्पष्ट करने के लिए, ये तो ऋषि है, कोई साधारण व्यक्ति है नहीं जिन्होंने सब शास्त्र तो पढ़े हुए, रोज यज्ञ कर रहे हैं, इसका मतलब वेद तो सारा जानते ही है, और सारा यज्ञ जो करते हैं, रोज यज्ञ कर रहे हैं और दीर्घ काल तक यज्ञ कर रहे थे, वो पूछते हैं देवकियाम वासुदेव, अभी माता का नाम भी एड कर लिया, क्या पक्का पुख्ता बात कर रहे हैं कि वासुदेव कौन से की भक्ति की बात कर रहे हैं। तो सूत, हे सूत गोस्वामी, जानासी, हम जानना चाहते हैं भद्रम, भद्रम विशेषण सूत गोस्वामी के लिए है, और प्रभुपाद जी ने लिखा है और हमारे आचार्य कहते हैं इससे उनकी इच्छा है कि उस वासुदेव के, कृष्ण वासुदेव के बारे में इनकी जानने की तीव्र इच्छा है, तब भद्र बोला है। यहां एक शब्द लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं भद्रम ते, आपके ऊपर भगवान की कृपा हो, ब्लेसिंग ऑन टू यू, इंडिकेट द सेजेस एंग्जाइटी टू नो एब्सोल्यूट ट्रुथ फ्रॉम द स्पीकर, परम सत्य के जानने के लिए बड़ी जिज्ञासा आती है उनको। तो वासुदेव परम सत्य है, ठीक है, तो ये प्रश्न क्या हुआ, भगवान, अब भगवान का एक विशेषण दिया है, विशेष भगवान का एक विशेष विशेषण दिया है इस प्रश्न में, वो विशेषण क्या है, सात्वताम पति ही। सात्वताम पति का मतलब है भक्त, सत्य, सत्य का मतलब परम सत्य, जो उसका, उसको जानना चाहते हैं, जो उसका शरण लेते हैं उसको सात्वता कहते हैं। सात्वता किसको कहते हैं, जो सत्य को जानना चाहते हैं, तो सत्य को, जो परम सत्य को जानना चाहते हैं उसको बोलते हैं सात्वता, और सात्वत का परिभाषा है भक्त, तो उसका पति, इसका अर्थ है ये भगवान का विशेषण है भक्त वत्सल, सात्वत पति मतलब भक्त वत्सल, ये भगवान का एक एंडियरिंग, हाँ एक शब्द लिखा एंडियरिंग, बहुत प्रिय, भगवान का बहुत प्रिय एक स्वभाव है भक्त वत्सलता। चेतन महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के सद्गुण बताते हुए कहते हैं भक्त वत्सल है, पहला भगवान भक्त वत्सल है, तो बहुत अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। और वत्स शब्द कहां से आता है? बछड़े से। और मां भक्त वत्सल होती है गाय, जो बछड़े को चाटती है। कैसे बछड़े को चाटती है? जब जन्म होता है बछड़े का ना, तो बेचारा मलमूत्र से सना हुआ होता है और उसको चाट के साफ करती है। जबकि गाय का स्वभाव है कि उसके चारे में अगर गोबर और मूत्र होगा तो नहीं खाएगी, अपने गोबर मूत्र से ना वो चाय में थोड़ी वो दुर्गंध होगी तो नहीं खाएगी, लेकिन फिर भी बछड़े को चाटती। ऐसे भगवान कितना भी अवगुण है अगर भक्त में, लेकिन भगवान के शरण में जाता है तो उसको साफ कर देते हैं। कब करते? तो भक्त की क्या पहचान होनी चाहिए जिसको भगवान साफ करते हैं? इसी भागवत के शब्दों में आगे आ जाएगा, क्या आएगा? शरणताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, फिर हृदय अंत स्थानी अभद्राणी धुनोति स्वर्द सताम। जो भक्तों से प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों के सारे अवगुण धो देते हैं। अभद्राणी, जितने अभद्र हैं वो सारे धुनोति धो देते। कब? जब भगवान की कथा सुनने में रुचि होती है। तो भगवान हमारे को अवगुणों से धो के साफ करेंगे, हम अपने प्रयास से नहीं कर सकते। किया होता तो कब का कर लिया होता। तो एक तो सात्वतम पति ये लिखा है, तो जातो यस्य, उसके जन्म का कारण क्या है? जातो जन्म का, जातो का अर्थ होगा जन्म, जातो जन्म, तो उनके जन्म का कारण क्या है? क्यों जन्म लिया, अथवा भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या? तो भगवान अवतर, इसी प्रश्न के अंदर भी उत्तर पड़ा है। सातवन पामपति भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधु नाम। लेकिन ये भी, ये ऋषि जिज्ञासु है, इनके जिज्ञासा का उद्देश्य क्या था? कलयुग से पीड़ित लोगों का उद्धार कैसे हो, उद्देश्य उनका ये था। और इसका उत्तर दूसरे अध्याय में कहां है देख लीजिए, 34, भगवान के अवतार का लक्ष्य क्या है, 34 को देखो। चलो 34 में भाव्यते एष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीला अवतार अनुरतो देवत्रयम् नरादीशो। भवत्य भाव्यत्य भाव्यति मेंटेन, टू मेंटेन, भाव्यति सबको संभाल के रखने के लिए, सत्वेन शुद्ध सतोगुण में, लोकान जो लोक, लोकान सारे दुनिया के लोग,
32 से 96 और 1800।
इसका हिंदी में अर्थ प्रिय श्लोक का
32 से 96 गाली किसकी भैया, किसी की है?
इस प्रकार
32 से 96
3296 गाड़ी नंबर,
ये हमारे यहाँ नहीं है।
और कौन सा? कौन सा?
हमारे यहाँ नहीं है कोई 32 से 96 वाली। 1823 1823 32 से 96 वाली नहीं।
पढ़िए इसका अर्थ, पढ़िए भैया।
इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी,
इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी
देवताओं
मनुष्यों तथा
निम्न पशुओं से आवासित सारे लोगों का पालन पोषण करने वाले हैं।
तो पहले तो जो यहां शब्द है कहाँ गया हमारा प्रश्न? बारह क्यों अवतार लिया, तो कौन है असल इसका, क्या अवतार का कारण क्या है? तो अवतार का कारण बताते कहते हैं कि सर्व ब्रह्मांडों के नायक, सर्व ब्रह्मांडों के नायक, और सारे ब्रह्मांडों में कौन रहते हैं? देवताओं से लेके मनुष्यों से लेके पशुओं तक जितने भी है, उनके जो जो उनके जो पालक है, जो उनका मेंटेनर पालक है, वो क्या करते हैं?
वे अवतार ग्रहण करके सतोगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं।
वो अवतार ग्रहण करते हैं। तो अवतार का अर्थ क्या है? नीचे उतर के आते हैं। किसके लिए उतर के आते हैं? सतोगुण में जो लोग हैं, सतोगुण में जो लोग हैं वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, तब वो नीचे उतर के आते हैं, और फिर जब आते हैं तो लोगों का कल्याण करते हैं। ये तो भागवत में इसका उत्तर हो गया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय में जब कहा कि मैं सूर्यदेव को ज्ञान दिया, तो अर्जुन ने कहा सूर्यदेव पुराना था, आप नए हो, तो भगवान ने कहा हम कई बार आए हैं, लेकिन वहां ले कह दिया कि बहुनी जन्मानी, तो भगवान ने अर्जुन ने जन्म शब्द को पकड़ लिया। तो पूछा मानो कि आपका जन्म होता है क्या? लोग तो जन्म को कहते हैं जन्म अच्छा नहीं, जन्म लेने का मतलब कर्म से, तो क्या आपका जन्म होता है क्या? तो भगवान को कहना पड़ा अजोपी सन्नाव्यात्मा, मैं अजन्मा हूं, अव्यात्मा, मेरा शरीर कभी परिवर्तनशील नहीं है, ऐसे का ऐसे होता है। तो फिर कह दिया अजोपी सब अव्यात्मा भूतानाम ईश्वर उपेशन, सब ये भूतानाम ईश्वर उपेशन, अभी बोलता ना सब प्राणियों का मैं ईश्वर हूं, जो इस उत्तर में आया है ना, तीनों लोगों के मतलब सब ब्रह्मांडों का मैं मालिक हूं। तो भूतानाम ईश्वर उपेशन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा है, प्रकृतिम कौन सी है? मेरी प्रकृति क्या है? सात्वतम पति, मेरी प्रकृति क्या है? भक्त वत्सलता, ये मेरा स्वभाव है। वहां जो प्रकृति शब्द है वो भक्त वत्सलता समझना चाहिए, सात्वन तंपति समझना चाहिए, क्योंकि वो सात्वत पति है, वो भक्त वत्सल है, ये उसका प्रकृति का मतलब स्वभाव होता है। भगवान का स्वभाव क्या है? और वैसे भी लिखा है जहां जहां, तो आगे क्या कहा? स्वयं प्रकृति में अधिष्ठाय संभवामी आत्म मायया, मेरी अपनी दिव्य योग माया के माध्यम से मैं स्वयं जैसा हूं उसी अपने रूप में प्रकट होता हूं। तो अर्जुन ने ऐसे फिर दोबारा पूछा क्यों? तो भगवान ने कहा धर्म की स्थापना के लिए, यदा यदा धर्मस्य। अर्जुन देखा ऐसे भगवान के देखा लगा, धर्म की स्थापना के लिए किसी को भेज देते, आपको आने की क्या जरूरत है? किसी को भेजा जा सकता है ना। तो भगवान का परित्राण है साधु ना, साधु मुझे बुलाते हैं इसलिए आता हूं। बहुत अच्छी बात है, प्रहलाद को संकट हुआ और उसने बुलाया भी नहीं, आप अपने आप आ गए फिर आप चले गए। तो ये भी आपके अवतार का मुख्य उद्देश्य नहीं दिख रहा है, मुख्य है भी सही, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा कोई और भी इसका कारण है क्या? तब भगवान ने कौन सा श्लोक बताया? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योति तत्वता। मैं तो जब अवतार लेता हूं तो एक तो आता हूं ऐसे अद्भुत रूप से आता हूं कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कभी भूलते नहीं, और फिर ऐसे ऐसे मैं लीलाएं करके जाता हूं, मेरे जाने के बाद कई करोड़ों वर्षों तक लोग उनका श्रवण करके अपना अपना जीवन सफल करके मेरे पास आते रहते। और इस श्लोक को कभी प्रभुपाद ने गीता का मुख्य श्लोक कहा है, सब श्लोकों में गीता का मुख्य श्लोक, एक दिन प्रभुपाद ने मुच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्सन भगवद गीता, तो किसी ने सर्वधर्मान कहा, किसी ने मन मना कहा, लेकिन उस दिन प्रभुपाद ने उस विशेष दिन का जन्म कर्म समय दिव्यम, ये सबसे मुख्य भगवद गीता का वर्ष। तो भगवान के अवतार का मुख्य लक्ष्य है ऐसी लीलाएं करना जो जीवों को अनादिकाल तक आकर्षित करती रहे। तो यहां शब्द है कि लीला करने हेतु, लीला शब्द, लीला अवतार, लीला अवतार, और अनुर्तो, अनुर्तो भी शब्द लीला की भूमिका। और कैसी लीला करते हैं, देखो कितने अवतार भगवान के हुए हैं, आपको भी नाम बहुत याद है, लेकिन प्रायः लोग किसके किस अवतार की तरफ ज्यादा आकर्षण है, सामान्य बताइए, राम और कृष्ण, क्योंकि उनकी लीला बहुत इजीली मानव जैसी है। तो रोल का मतलब यहां रोल अनुरितो, ऐसा रोल करते हैं जो इजीली। अब नरसिंह की लीला एक बार मतलब समझ में तो ठीक है, लेकिन उसकी लंबी लीला नहीं है भाई। वाराहदेव की लीला में श्रवण करना उसका अपना सबका भाव है, लेकिन ये अनुरुतो, तो जब देवकी वसुदेव का कहा है तो उसको लिखा है कि लीला करने के लिए, ये लीला अवतारों में आते हैं। ये अवतार का विषय है। अवतार क्यों भगवान ने लिया देवकी वसुदेव के घर में कृष्ण ने, तो उसका उत्तर ये हुआ कि भक्तों के बुलाने के ऊपर। कौन से भक्त बुलाने गए थे? ब्रह्मा से लेकर पृथ्वी आदि सब बुलाने गए थे, तो उनके हित के लिए आए, इसलिए वही कहेंगे कि आप सत्यव्रत हैं, आपने अपने व्रत को निभाया है, आपने वचन किया था पाला है, आप आए हैं। उसी में सात्वतम पति उधर उनकी प्रार्थनाओं में शब्द लिखा है, तो ये अवतार का हेतु है। अब इस श्लोक के एंड में एक शब्द है, अब वापस बारहवें श्लोक के ऊपर आके देखिए कि एक तो सातोत्तम पति के ऊपर प्रभुपाद ने लिखा है भावार्थ, तो दूसरा लिखा है नीचे, एक नीचे लास्ट लाइन देखिए इसकी, वासुदेव इज द सिंबल ऑफ ट्रांसेंडेंटल पोजीशन वेयर इन द अपीयरेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड टेक्स प्लेस। बारहवें श्लोक का लास्ट लाइन,
वासुदेव आध्यात्मिक पद का प्रतीक है जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है।
ये है हमारे लिए लाइन, विशुद्धम सत्वम वासुदेव शब्द्यते। जब हम विशुद्ध सत्वगुण में आएंगे तो वासुदेव के स्तर के ऊपर पहुंचेंगे, तब हृदय में भगवान प्रकट होगा। विशुद्धम सत्वम वसुदेव शब्द्यते, शुद्ध सत्वगुण में जब भक्त भक्ति करके, वैसे भक्ति तीनों गुणों से ऊपर है अपने आप में, भक्ति करने वाला सत्वगुण से ऊपर उठ जाता है, तो सत्वगुण से ऊपर कहां जाएगा? शुद्ध सत्वगुण में जाएगा, और शुद्ध सत्वगुण में जाने वाले को वसुदेव कहते हैं, और उसके हृदय में भगवान प्रकट होता है। भगवान का प्रकट्य कहां होगा? शुद्ध सत्वगुण में, उसको वसुदेव शब्द देते, वसुदेव शुद्ध सत्वगुण को कहते हैं जिसमें भगवान का प्रकट्य होता है। और भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य जहां दशम स्कंद भागवत में लिखा है, इसका उत्तर दूसरा क्या है श्लोक का? 34वें श्लोक में तो फिलोसॉफिकल उत्तर है, लेकिन पूरा उत्तर दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का है। तीसरे प्रश्न का पूरा उत्तर दशम स्कंद श्रीमद् भागवत है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन है। वहां परीक्षित जिज्ञासा करेगा, वहां महाराज परीक्षित जिज्ञासा करेंगे कि आपने सूर्य वंश का वर्णन किया, चंद्रवंश का भी वर्णन किया, लेकिन मेरा अपना जिससे संबंध है, जिसने मेरे को जन्म से पहले दर्शन देके रक्षा की, जिसने मेरे पितामह का सारथी बन के उनका सहायता किया, उनके विषय में मेरे को जानने की इच्छा है, आप उसका मुझे विस्तार से बताइए। तब दसवें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन 90 अध्यायों में जाके होगा। तो इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर दसम स्कंद श्रीमद् भागवत का पूरा है। 34वां श्लोक संक्षेप में फिलोसॉफिकल उत्तर है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, लेकिन वासुदेव भगवान ने जन्म क्यों अवतार लिया, उसका उत्तर दसम स्कंद है पूरा। 9वें स्कंद के अंदर थोड़ा सा संक्षेप है, इसलिए उसमें संतुष्ट न हुआ परीक्षित, तब उसने प्रश्न पूछ के पूरा दसम स्कंद सुखदेव महाराज ने वर्णन किया। तो ये वासुदेव की स्थिति, भागवत में जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन है वहां क्या लिखा है, भगवान अपि विश्व आत्मा नाम, भगवान अपि विश्व आत्मा।
1404 गाड़ी किसी के 1404
88,000 ऋषियां गाड़ियों पे आए थे क्या? यानी कि पार्किंग में की होती तो बड़ा डिस्टर्ब होता नहीं, बेचारे पैदल आए होंगे नहीं। अरे कृष्ण, कोई बात नहीं, तो गाड़ी नहीं आती ऋषि उतारने से। तो वहां श्लोक क्या लिखा है भागवत में, भगवान के अपीयरेंस के समय, भगवान अपि विश्व आत्मा, कौन से भगवान, वो सबके हृदय में रहते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। विश्व आत्मा का एक अर्थ है हर एक के हृदय में कण कण में विराजमान होने वाले, और दूसरा अर्थ है विश्व आत्मा का सबसे प्रेम करने वाले। भगवान अपि विश्व आत्मा, दूसरा विशेषण है भक्तानाम अभयंकर, जो अपने भक्तों को भय से मुक्त करते हैं। इसका अर्थ हुआ सात्वतपति, भक्तों का संरक्षण करने वाले, भय से मुक्त करने वाले। भक्तानाम अभयंकर, फिर क्या लिखा है, भगवान अपि विश्व आत्मा, भक्तानाम अभयंकर, अंश भागेन, अपने सारे अंशों के साथ। सारे अंश का मतलब जितने पहले अवतार हुए हैं नरसिंह वारा आदि, उनके सहित, अंश भागेन, आवेष्ट परवेष्ट, मन अनंक दुबदुबी ही, अनंक दुबदुबी वसुदेव का नाम है, जिसके जन्म के समय देवताओं की दुमदुबियां अपने आप बज गई थी। तो अनंक दुबदुबी वसुदेव के मन में भक्तों का भय नाश करने वाला, सबसे प्रेम करने वाला भगवान प्रकट हुआ। तो वासुदेव किसको कहते हैं, जिसके मन में भगवान प्रकट हो। तो वासुदेव जो ये लास्ट लाइन है, इसके ऊपर कभी मेरे ख्याल वो जो शिक्षा दे भागवत का पढ़ाते हैं उसमें ये प्रश्न होता है, वासुदेव शब्द किसको कहते हैं, विशुद्धम सत्वम वासुदेव। वासुदेव स्थिति जब किसी की होती है, इसका मतलब शुद्ध सत्वगुण में होगा, उसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। जैसे वसुदेव के हृदय मन में भगवान ने प्रवेश किया, और फिर क्या लिखा है भागवत में, वहां जगत मंगलम, जगत का मंगल करने वाला भगवान वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में परिवर्तित हुए, स्थानांतर हुए। वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में स्थानांतर हुए, और उसके ऊपर प्रभुपाद ने लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, ये प्रक्रिया है गुरु शिष्य के हृदय में अपने मन में प्रकट किया हुआ भगवान स्थापित करता है। गुरु शिष्य के हृदय में अपने हृदय में प्रकट किए हुए भगवान को स्थापित करता है, इसको बोलते हैं दीक्षा। मानो वसुदेव ने देवकी को दीक्षित किया, अपने मन में प्रकट किया हुआ भगवान देवकी के हृदय में स्थानांतर किया, और उस वक्त क्या हुआ चमत्कार के, दोनों के अंदर से प्रकाश निकलने लगा, दोनों चमक रहे थे। तो आपने देखा है ये देव कभी साधु महात्माओं के फोटो के चारों ओर से ग्लो निकालते हैं, इसका अर्थ है कि इन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है, लेकिन कंप्यूटर वाला नहीं, अपने आप जिसमें जरा प्रकाश दिखता हो, जिसका जो चमकता हुआ दिखता है ना महात्मा, इसका मतलब इसके हृदय में भगवान प्रकट हुए हैं। ऐसे लिखा है वसुदेव से प्रकाश निकलने लगा, और देवकी भी इतनी चमकने लगी कि कंस की मनोवृत्ति बदल गई। कंस ने देवकी को देख के कह दिया, लगता है कि मेरे मारने वाला इसके उदर में आ गया है, तब ये चमक रही है, अभी तक तो भयभीत भी नहीं हो रही है, लेकिन इसको मारना चाहिए। नहीं नहीं, स्त्री है, गर्भवती है, तो मेरे को मारना नहीं चाहिए। तो जिसके हृदय में भगवान अवतरित होता है, क्रूर से क्रूर व्यक्ति कंस जैसे का भी मनोवृत्ति बदल जाती, तो उसका फिर कोई शत्रु नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि भक्त का कोई दुश्मन होता ही नहीं, क्योंकि दुश्मन आएगा तो भी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। हृदय में अगर भगवान प्रकट हो गया तो शत्रुता नहीं रहेगी। तो ये वसुदेव शब्द थे जो इसमें है, दो ही बातें हैं। एक सातवंताम प्रतीक भगवान का विशेष गुण है, इन दोनों के बीच में देखिए ये जो तेरवा आइए बेटा हरे कृष्ण
आपने कहा भक्त का कोई दुश्मन नहीं रहने और लीला में हम देखे हरिदास ठाकुर का कि रामचंद्र खान हर समय मतलब इस प्रकार का ही करते थे कि उनको लांछित किया जाए
वो इसलिए वो चिंतामणि का उद्धार करने के लिए उसमें उद्देश्य चिंतामणि के उद्धार का है। रामचंद्र खान को यूज करके चिंतामणि का उद्धार कराया, दिखाया ये कि हरिदास कितना महान है। हरिदास की महानता करनी थी कि जब तपस्वी विश्वामित्र जिसने गायत्री को साक्षात्कार किया था वो भी मेनका के आने के ऊपर लुभा गया, और जबकि ये भगवत नाम स्मरण करने वाला हरिदास उस साक्षात माया देवी का स्त्री रूप में आने के ऊपर भी उसका परिवर्तन करके भक्तन बना दिया और उसके ऊपर कोई, तो ये हरिदास की महिमा प्रकट करने के लिए किसी ने रामचंद्र खान ने एक शत्रु का रोल अदा किया, जैसे रावण ने राम का शत्रु का रोल अदा किया रावण की राम की महिमा बढ़ाने के लिए। अब रावण ही नहीं होता तो रामायण कहां से आती तो रामायण की महिमा बढ़ाने के लिए इसलिए कभी कभी भागवत आदि में हम कहते हैं सत्संग में समझाने के लिए कि भागवत में रावण का भी वर्णन है तो कंस का भी वर्णन है, हिरण्याकश का भी वर्णन है, आप लोग इनकी निंदा मत करना क्योंकि ये सारे भगवान के भक्त हैं। कौन है हिरण्याकश, कौन है जय विजय है ना, रावण कौन है, ये तो भगवान के पार्षद है, ये तो भगवान की इच्छा से शत्रु बन के सामने खड़े हैं। जैसे भीष्म पितामह लड़ रहा है और भगवान के सामने, लेकिन है तो भगवान का भक्त मां भागवत है। आपको किस चीज की निंदा करनी चाहिए, जो उनके अवगुण है वो अपने में मत आने दो, उनकी निंदा मत करो, उनके अवगुण अपने में मत आने दो। इसलिए कभी हमको कहना पड़ता है रावण को जो जलाते हैं दशहरे में ये शास्त्र उक्त नहीं है। और कोई मुझे बता रहा था जो जो रावण को जलाने वाले हैं उनके वंश में बाकी कोई रहता नहीं, किसी ने मुझे बताया उसका अनुभव, चार पांच पीढ़ियां उनकी सुनाई मेरे को भी, रावण को मारने का अधिकार राम को है जो उसका मालिक है। तुम कौन से किसी मंत्री को बुलाते इसको तीर मारो तो बदमाशी है नहीं, किसको बुलाते हैं तीर मारने के लिए, किसी किसी को मंत्री को बुलाते ना, अकबर की रामायण अरे कृष्ण नहीं, मैं कहने का भाव है कि देखो रावण के अवगुण तो हमसे गए नहीं, जो रावण से ज्यादा बदमाश है उसको बोलते हैं कि रावण को तीर मारो कम से कम अगर ड्रामा ही करना है तो किसी बच्चे को राम के कपड़े पहना दो फिर बोलो कि इसको तीर मारो, अगर फटाके ही सुनने हैं तो। बाकी रावण को तुमने कौन सा मारा, अपने अंदर रावण बैठा है, वो एक पैसों का खरीद करके फटाके चलाए रावण मर गया। हर साल रावण मारते हैं और एक रावण मारते हैं और 1000 रावण पैदा होते हैं, वही जो मारने वाले हैं वही बड़े रावण है। तो ये रामायण की लीला करना अच्छा, पहले रामलीला हुआ करती थी, रामलीला करना तो ठीक है, लेकिन ये रावण को मारने वाला इतना बड़ा ड्रामा करना, ये असल में हमारा शास्त्र उक्त नहीं है कहीं। कभी ऐसा रावण को जलाने वाला ये काम हमारा काम नहीं। होली के दिन आग लगाते हैं तो प्रहलाद को निकालने के लिए निकालते हैं, होलिका को जलाने के लिए नहीं, प्रहलाद को निकालने के लिए करते हैं। तो भक्त के तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके प्रश्न का उत्तर है कि भक्तों का कोई कभी शत्रु दिखता है तो वो असल में उसकी भक्ति को दृढ़ करने के लिए अथवा उसकी महिमा को ज्यादा प्रकाशित करने के लिए होता है, ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो यहां चौथे प्रश्न पूछने तक, तीसरे प्रश्न से चौथे प्रश्न तक तीन चार श्लोकों में, मतलब 14, 15 और 16 तीन श्लोकों में जब वासुदेव भक्ति की बात हुई, भगवान के अवतार के कारण का वर्णन हुआ, तो ये ऋषि जानते हैं हमारे हित के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इनके अपने मन में उद्गार आ गया, अरे आपने भक्ति कही ना, तो भक्ति क्या है उसका वर्णन स्वयं करते हैं। क्या आप उस भक्ति की बात कर रहे हैं वसुदेव की, जिसमें अचानक बेबस होके अनायास किसी के मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो भी भय उससे भयभीत हो जाता है? ये भगवान की, ये ऋषि, ये सनक आदि ऋषि बोल रहे हैं। इससे जिज्ञासु कितना समझदार है वो दिखता है। क्या कहते हैं, आपन संश्रता घोरान या नाम विवशो गणम। विवशो का मतलब बेबस, विवश होकर अचानक भगवान का नाम कोई जप ले तो इस घोर संसार मृत्यु सागर से आदमी एकदम पार हो जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इस श्लोक से अजामिल की कथा का वर्णन हो रहा है कि बेबस होकर नारायण का नाम लिया तो जमदूतु जैसा घोर भयानक दृश्य से अपने आप बच गए। जमदूतु का वर्णन देखा है, जमदूत कितने आए थे मालूम है? हाँ, तीन क्यों आए थे? और भगवान के दूत कितने आए? क्यों? नारायण के दूत चार आए। अच्छा, तो वो जम के दूत आए थे, उसका रूप कैसा बताया है? किसी को याद है? विशेष वर्णन है, बाल ऐसे खड़े खड़े थे, आजकल ऐसे जेल लगा के आते हैं जमदूत। वैसे ऐसे क्या जमदूत का ये अभिनय, कितने बच्चे आजकल करते हैं देखा। एक तो मैं मॉरिशस देख रहा था, एक बच्चे के बिल्कुल उसने रंग लगा के बाल भूरे किए, मैंने बोला तो कुत्ता ही बन जाता भूरा होता। इतनी बड़ी खर्चा करके बालों को भूरा भूरा किया, जैसे कुत्ते जैसे होते हैं, कोई बात है? और फिर कोई काले कोल, भूरे कोल, पीले, तीन चार पांच कलर है, अरे चीता बन जाता है। इतना बड़ा प्रयास कर रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को दूसरे जन्म में वहां जाने की तैयारी कर रहा है, उसके काम से लगना ने। वो जो यमदूत कहते हैं ये तो हमारे भाई हमारे जैसे वाले, इसको तो ले चलो अपने पास काम आएंगे। और ग्राहक बन रहे हैं उनके सीधे से डायरेक्ट। हरे कृष्ण। तो बात पहले, पहला क्या श्लोक पढ़ लिया, पढ़िए इसका अर्थ, तेरहवा हमने पढ़ा ही नहीं, चौथे में चले गए। तेरहवा, तन्न सुषुम्नानाम अहरस्य अंगानुवर्णितम् यस्यावतार भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। ये पहले जो तीसरा प्रश्न है उसका और ज्यादा विश्लेषण कर रहे हैं। इसका अर्थ पढ़िए, क्या कहते हैं? सुश्रमाणानाम।
सुत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के उत्सुक हैं, कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए। उनके कहने तथा सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है।
इस श्लोक में चौथे और पांचवें प्रश्न का संकेत है। ये जो तेरहवां श्लोक है ना, इसमें जो चौथा और पांचवां प्रश्न है भागवत का जो आगे आएगा उसका संकेत है। और इसमें कहा क्या गया है, हम सुनने के लिए उत्सुक हैं, और दूसरा आप जैसे पहले अनुवृत्ति आचार्य, अनुवृत्ति मतलब पहले जैसे बताया है उनके चिन्ह कदमों में चलते हुए बताना। प्रभुपाद जी ने इसके भारत में दो बातें लिखी है कि यहां दो बातें कही गई हैं, दो कंडीशन है। परम सत्य को जानने के लिए The condition for hearing the transcendental message of absolute truth are set forth here. दो condition है. Condition क्या लिखा है?
मैं
दो शर्त रखी है परम सत्य को अगर जानना है तो. पहली शर्त क्या है देखिए,
श्रोता को अत्यंत निष्कपट एवं उत्सुक होना चाहिए.
सुनने के लिए हमारे में सिंसियरिटी होनी चाहिए, हम सुनने के लिए उत्सुक हों और निष्कपट हों. ये पहली सुनने वाले की क्वालिटी है. अब सुनने व सुनाने वाले की क्वालिटी क्या होना चाहिए? दूसरा,
वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो.
और सुनाने वाले को देखो अनुवर्ती, यानी अनुवर्ती, अनु कहते हैं किसी के पीछे चलना. जैसे पहले व्यास देव आदि जैसे वर्णन करके गए हैं उनकी शिक्षाओं को वैसे ही बताए. इसका मतलब अपना कोई नया पंथ न चलाए. भगवान और भगवान के भक्तों ने जैसे वर्णन किया है तो दो कंडीशन है परम सत्य को समझने के लिए. सुनने के लिए उत्सुकता और निष्कपटता. तो सुनने में कपटता क्या होती है?
सुनकर अपने हिसाब से मतलब निकालना
उनका. सुन के अपने तरफ से मतलब. तो सुनने में कपटता क्या है? सुनने के बाद उसके ऊपर संदेह रखना. सुनाने और क्या है? सुनने में सुनने के अंदर कुछ भौतिक उद्देश्य होना. परम सत्य को न जानना केवल भौतिक लक्ष्य के लिए. तो सुनने का ये नीचे स्तर का सुनना है. कपट का है ना, कहे नीचे स्तर का सुनना है कि किसी भौतिक लाभ के लिए सुनना अथवा स्वर्ग आदि के भोग के लिए सुनना. अथवा निष्कपटता से सुनना का मतलब सोने में नहीं सोना, सुनने में नहीं सोना.
सुनाने वाले ने श्रद्धा का न होना.
अथवा परीक्षा के लिए सुनने के लिए बैठना के क्या ये मेरे जितना जानता है कि मेरे से कम जानता है कि ज्यादा जानता है. सुनने में निष्कपटता का अभी भी मेरे ख्याल में कुछ वो तो अच्छा है. निष्कपट होके सुनना.
ये भी हो सकता है कि कुछ सुन लिया फिर बाकी जो लोग हमको बताया कि ये क्या बोला.
अच्छा, मैं इसमें इसका अभी मेरे को दिमाग में ऐसे ही लाइट आ रही है. ये भागवत के महात्म में स्कंद पुराण में पांच प्रकार के श्रोता और वक्ता का वर्णन है. तो कुछ श्रोता ने कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, उसमें कहा है कि ऊंट जैसे श्रोता, किसको बैल जैसा श्रोता कहा है. बैल जैसा श्रोता कौन सा है? उसको अंगूर और खली दो तो अंगूर नहीं खाएगा, खली खाएगा. ऊंट जैसा श्रोता किसको कहा है कि वो फल फूल छोड़ के कांटे वाले झाड़ खाएगा. तो सुनने वाले क्या करते हैं, जो सार है उसको छोड़कर बेल की तो सार नहीं और असार को घर ले जाते हैं. उसमें पांच प्रकार के श्रोता का वर्णन है. कल निकाल के लाए या कहां लाए आपको बताऊं, अगर ढूंढ के लाना है. कौन लाएगा? भागवत के स्कंद पुराण के महात्म के में पांच प्रकार का वक्ता और पांच प्रकार का श्रोता है. वेदाव्यास में नहीं आएगा इसका. आपको हो सकता है हो, लेकिन अगर ठीक तरह हिंदी में देखना है तो भागवत का जो गीता प्रेस का दूसरा भाग है ना, भागवत का जो दूसरा भाग है, हाँ, उसका जो दूसरा भाग है उसके लास्ट में पांच अध्याय में महात्म है. उसमें कपटी अब एक तरह के सुनने वालों में बीच बीच में जोर जोर से अजय अचानक फोन आ जाना, इसका अर्थ ये है कि दूसरों को डिस्टर्ब करना. उसमें लिखा है भ्रूण श्रोता उसको कहते हैं. नहीं, मेरा मतलब उसमें ये लिखा है तो एक ये दिखता है कि हो सकता है कि निष्कपट का मतलब ऐसे निच स्तर के नहीं उच्च स्तर का सुनना सुनने वाला होना चाहिए। लेकिन अभी भी संतुष्टि नहीं हो रही है, वो तो है निष्कपट होके सुनना। निष्कपट होकर सुनने का अर्थ ये होना चाहिए कि परम सत्य से नीचे किसी भी चीज के लिए नहीं सुनना। सुनना है यहां जो शब्द लिखा है प्रभुपाद ने कि परम सत्य संदेश जो परम सत्य का है तो उसी लक्ष्य के लिए सुनना, वो तो निष्कपट सुनना हुआ भगवान को जानने के लिए सुनना। अथवा भगवान सुनने से भगवान को प्रेम अगर नहीं हुआ, भगवान के सुनने में टेस्ट नहीं डेवलप हुई, तो इसका मतलब सुनना निष्कपट नहीं है।
क्योंकि सूत गोस्वामी श्री व्यास देव की परंपरा से हैं और नैमिषारण्य ऋषि मुनि निष्कपट जी हैं और सत्य के जानने जो सत्य को जानने के लिए ललाई।
तो ये इसका अर्थ ये निष्कपट सुनने वाला उसको कहा जाएगा जो सुनने के बाद भगवान से प्रेम करने के लिए लालायत हो। इसके आगे आएगा वासुदेव का साम्य रति हो। अगर ये नहीं हो रही है तो इसका मतलब कुछ न कुछ हमको मालूम नहीं हो रहा है लेकिन हृदय में कोई न कोई भोग का भाई संसारी भोग का भावना है अथवा कोई और भौतिक इच्छाएं हैं उसी सुनने से। इसलिए भागवत के श्लोकों को भगवत गीता के श्लोकों को भी ऐसे लिखा है भौतिक सुख के लिए इस श्लोक का जप करोगे तो ये फायदा होगा, आध्यात्मिक सुख के लिए करोगे तो ऐसे ऐसे बहुत से लिखे हुए किताब भी मिलते हैं। कुछ श्लोक हैं जिसका अर्थ भाव ये होता है। तो निष्कपट सुनना, उत्सुकता भी हो निष्कपटता भी हो। तो ये दो बातें सुनने वाले की और सुनाने वाले को पूर्ववर्ती आचार्यों के चिन्ह कदमों के अनुसार चिन्ह चरणों के माध्यम से सुनाने का प्रयास करना चाहिए। वो भी मैं मेरी समझ में जितना आता है जो मैंने समझा है वो बताता हूं, लेकिन ये सब कुछ नहीं है ऐसे कहेंगे सूत्र गोस्वामी। और इसके बाद 14वें श्लोक में क्या कहते हैं कि ऐसे भगवान की ऐसी तरह से अगर सुनना जाएगा तो फिर उस भगवान की महिमा कर रहे हैं, भक्ति की महिमा कर रहे हैं, भगवान के नाम उच्चारण से मुक्त हो जाएंगे। और फिर उन भक्तों की महिमा यहां कही गई है 15वें श्लोक में। देखिए 14वें का भावार्थ तो पढ़ लीजिए हिंदी में।
जन्म तथा मृत्यु के जाल में फंसे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इसके नाम से भयभीत होता है।
तो साक्षात भय तो है यम के दूत, वो भी जन अजामिल ने नारायण के नाम लेने से वहां से धक्के देके निकाल दिया बेचारों को, तो भयभीत हो गया। तो इसलिए विश्व चरणनाथ चक्रवर्ती ने इसके श्लोक में संकेत दिया है। तो ये हुआ कि भक्ति कैसे होगी भगवत नाम उच्चारण से, वो अनायास भी हो जाए बेबस भी हो जाए तब भी लाभ देगा। अब कहते हैं ऐसे लोग जो आपको भगवान का नाम उच्चारण की प्रेरणा देते हैं वो कितने महान है। तो इनडायरेक्टली भगवान की महानता भगवान के भक्तों की महानता से किया। दसम अध्याय भगवत गीता का 10वें अध्याय में, 10वें अध्याय का नाम क्या है भगवत गीता का? भगवान के ऐश्वर्य। तो कितने ऐश्वर्य भगवान के उसमें है? कितने 64-66 कितने 36। कुछ ऐश्वर्य गिनने से पता लग जाएगा 40ों के करीब है मेरे ख्याल में। उनमें से मुख्य ऐश्वर्य कौन सा है? 40ों को छोड़ के मुख्य ऐश्वर्य हमारे अनुभव से जो है वो क्या है? दसम स्कंद भगवद गीता में विशेष क्या है? चतुर्श्लोकी गीता। चतुर्श्लोकी गीता में विशेष क्या है? भगवान के भक्तों का वर्णन, भगवान के भक्तों का वर्णन। मेरा भक्त कैसा होता है? मच्चिद मदगत प्राण बोधयंतर। इसका मतलब भगवान का सबसे बड़ा ऐश्वर्य भगवान का भक्त है। दसम स्कंद का सार जो हमको समझ में आता है कि भगवान के सारे ऐश्वर्यों में, सारी विभूतियों में बड़े से बड़ी विभूति भगवान का भक्त है। क्यों? भगवान के भक्त की क्या पहचान है? चैतन्य महाप्रभु की भाषा में, जिसको देखकर भगवान याद आ जाए। भक्त को देखकर भगवान याद आता है। जैसे अब देखो, कभी बाहर जाते हुए भक्त जाते हैं, लोग क्या कहते हैं, जाते दूर से कौन जा रहे, वो हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं, तो उनको हरे कृष्ण याद आ गया कि नहीं आया? तो भगवान का नाम किसी के मुख से निकल जाए, उस भक्त की पहचान है। अब भक्त की महिमा क्या है? और ये सातवें अध्याय का श्लोक भगवद गीता का है, जहां लिखा है अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम। तो वहां पुण्य कर्म क्या है, उधर क्या लिखा है? भक्तों का संग। किसी को भक्त का संग मिलेगा तो उसका पुण्य उदय होगा और सब पाप नाश हो जाएंगे। भक्त का संग पुण्य उदय करता है, उसके भावार्थ में ये लिखा है। और फिर भूरीजन प्रभु ने कहा है कि ऐसा एक भक्त प्रभुपाद जिसके केवल दर्शन मात्र तो दूर बात है, नाम लेने से भी कितने लोगों का पुण्य उदय हुआ पूरे विश्व के अंदर। तो अब यहां कंपेरिजन किया जा रहा है इस श्लोक में, पंद्रहवें में। एक है गंगा, जिसमें स्नान करने और दर्शन करने से सबका पाप धोती है, और गंगा के लिए शब्द है स्वर ध्वनि आपो, स्वर ध्वनि आपो, देवलोक से जो आती है जिसकी स्वर ध्वनि गंगा को कहते हैं आपो। गंगा जल सारे पाप धो देता है, किसके? जो गंगा में स्नान करता है अथवा दर्शन करता है। लेकिन भगवान का भक्त का केवल स्मरण करने से भी सब पाप नाश हो जाते हैं। जो भगवान का नाम जपाता है वो भक्त कितना महत्वपूर्ण है। ये श्लोक पढ़े, यदपाद संक्षर्यासुता मुन्यः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्ति उपसृष्टा सुरध्वन्यापो अनो सेवया। पढ़िए इसका अर्थ।
हे सूत, जिन महान ऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है।
तो गंगा के भाई, गंगा में जब जाओगे हरिद्वार, तब स्नान करोगे ना, भक्त उससे महान है कि आपके घर में भी आ जाएगा। तो ये उसकी विशेषता है कि वो तो स्थान पे जाओगे तब पवित्र करेगी, लेकिन साधु चलते फिरते तीर्थ हैं, जहां जाते हैं वहां पवित्र करते हैं। और प्रभुपाद जी इसके भावार्थ में प्रभुपाद और विष्णुपाद दो शब्द लिखे हैं कि जो भगवान का आश्रय लेते हैं वो भगवान के चरण कमलों के समान है, और वो जो उनके संपर्क में आता है उनको पवित्र कर देते हैं। और इसके ऊपर वो भजन लिख कर दो पंक्तियां लिखी है। हाँ, क्या पा गाइए गाइए इसको। इसका अर्थ पढ़ लीजिए, लिखा है इसमें। ऐसे पढ़िए, इसका अर्थ आ जाएगा।
अत्यंत कृपालु भक्तगण कहाँ मिलेंगे, इनके मात्र संगति करने से, ऑडियंस फोर्सेस को
भाई उनका दर्शन करने से,
कभी गंगा के पवित्र जल में अनेकों बार स्नान करने से शुद्ध होता है, लेकिन आपके दर्शन मात्र से तो पतित जीव है वो सिद्ध हो जाता है, ये आपकी महान शक्ति है।
तो भगवान के भक्तों का जो भगवान के नाम का विशेष रूप से जो भगवत नाम, जिससे पहले नाम का श्लोक है, किसी को बेबसी में भी मतलब अनायास भगवान का नाम जपवाने का प्रयास करते हैं, ऐसे भक्त लोगों को पवित्र करते हैं। कैसे करते हैं, उनका संपर्क दर्शन कैसे पवित्र करता है, क्योंकि उनके मुख से नाम सुनने से दूसरे का मुख से नाम निकलेगा, चाहे ऐसे भी निकले, कहते मजाक में निकले, ए देखो तो हरे हरे कृष्णा कर रहा है, तेरी हरे कृष्णा तो बोलेगा ना,
हरे कृष्णा वाले का फोन आया है।
कैसे भी निकले, वो लिखा है वहां, किसी के हंसी मजाक करते हुए भले निकल जाए तो भी उसका लाभ हो गया, कैसे भी होना चाहिए। तो ये यहां विशेष रूप से कहते, पहले तो गंगा जरूर पवित्र करती थी, वैसे गर्ग संहिता में लिखा है 5000 साल तक गंगा पति तपावनी रहेगी। आप 5000 साल पूरे हो गए, अब पिकनिक की स्थान बन गया, अभी गंगा में पवित्र करने वाला वो प्रभाव कम हो गया। क्यों कम हो गया, कि पापी ज्यादा स्नान करते हैं। गंगा ने कहा पहले साधु आके स्नान करेंगे, अब साधु जाते कम हैं और सारे पापी उधर पड़े होते हैं, तो गंगा बिचारी का पाप धारण करने की शक्ति 5000 साल के बाद कम हो जाएगी। जगन्नाथ 10000 साल तक पति तपावन रहेंगे दारू ब्रह्म के रूप में, जगन्नाथ लकड़ी की मूर्ति के रूप में दारू ब्रह्म के रूप में 10000 साल तक पति तपावन रहेंगे। तो अभी जगन्नाथ, इसलिए महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जाके रहे, और तब ये और कारण है, लेकिन ये है कि कलयुग के लोगों का उद्धार करना। इस्कान में पहली पूजनीय मूर्ति जगन्नाथ की स्थापना हुई, इस्कान की स्थापना, स्थान के अंदर श्री विग्रह की पहली स्थापना जगन्नाथ की हुई, मैं 67 में तो रथ यात्रा की जगन्नाथ की, 67 में पहला जो श्री विग्रह इस्कान में स्थापित हुआ वो जगन्नाथ का हुआ, और फिर कुछ दिनों तक जगन्नाथ के ही श्री विग्रह स्थान में स्थापित। राधा कृष्ण का विस्तार तो बहुत देर से 70s में हुआ। तो जगन्नाथ पति तपावन और पूजा में बहुत आसान, स्नान के लिए परेशान नहीं करते हैं, कपड़े बहुत ढीले ढाले पहनते हैं, खाने में दाल चावल खा लेते हैं, वो मक्खन मक्खन के झंझट में नहीं डालते हैं। हमारी सरल से बहुत है। खाते को देख के खुश करते हैं, और प्रसाद सारा जो कभी किसी को उपलब्ध नहीं था जगन्नाथ ने इस धरती के ऊपर सबको लाके दे दिया। और जो विष्णु के प्रसाद मिलना, लक्ष्मी किसी को नहीं देती थी, नारद ने शंकर को दिया, और फिर सब परेशान हो गए, तो जगन्नाथ ने प्रसाद अपना संसार में बहुत सरलता से, जितना प्रसाद जगन्नाथपुरी में भगवान के मिलता है इतना कहीं और प्रसाद, 1,00,000 लोग एक वक्त में जाएं तो प्रसाद मिल जाएगा, इतनी व्यवस्था किसी और मंदिर में नहीं दुनिया में। और 16वें श्लोक में क्या है, 16वें श्लोक नेगेटिव जैसे बात करने के, को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शुण्यात यस्य कलिमलापहम्। कलयुग के सारे पाप नाश करने वाला जो भगवान का पवित्र नाम है अथवा कथा है, कौन ऐसा मूर्ख है जो नहीं सुनेगा। इसका मतलब नेगेटिव, ऐसे बोलते ऐसे हैं कि जो नहीं सुनते हैं वो मूर्ख है, इसका अर्थ ये है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जब बोलते हैं ना, किसी को नॉनसेंस नहीं कहते, सेंसलेस लगता है। अर्थ एक ही है लेकिन गुस्सा नहीं आएगा, थोड़ी लेस सेंस है, नॉनसेंस नहीं है। पढ़िए इसका अर्थ, पढ़िए,
किस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार, किस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के पुण्य यशो को नहीं सुनना चाहेगा।
अब बताइए इसका अर्थ क्या, जो नहीं सुनना चाहता है इस घोर कलयुग में भगवान के यश, वो क्या है, महामूर्ख। अब दुनिया में मूर्ख कम है कि बुद्धिमान कम है, मूर्ख कम है कि बुद्धिमान कम है। एक बार हमने, जब हम थे पाकिस्तान में हैदराबाद कराची में, तो एक अखबार में, एक न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी, कि एक पत्रकार पागल खाने में गया और पागल खाने में गया तो एक नया रोड बना हुआ था अंदर बड़ा, तो उसने पूछा बड़ा अच्छा रोड बनाया है। बोला ये जो पागल खाने में काम करते हैं इन्होंने बनाया है, और कितना खर्चा लगा? तो उस जमाने में लिखा था 5,000 रुपये में बन गया। वो ऐसे आंखें फाड़ के देखा, यही रोड अगर कॉन्ट्रेक्टर को बाहर देते म्यूनिसपालिटी या गवर्नमेंट का तो 50,000 में होता, 5,000 में बन गया। बोला पागलों ने बनाया। बोला अंदर जाके देखा एक पागल भोजन लेने के लिए 2 प्याले लेके खड़ा था। तो हमने पूछा 2 क्यों लेते? बोला मेरे खोली में दूसरा बीमार है जो ना मेरा पार्टनर है, तो उसका भोजन ले जा रहा हूं। मैंने कहा ये पागल तो नहीं लग रहे हैं, 50,000 का बाहर काम होता है वो 5,000 में हो रहा है, दूसरा बीमार है उसका भोजन ले जा रहा है, दूसरे तो बाहर भोजन छीन रहे हैं। फिर मैंने सोचा, उसको अखबार वाले ने लिखा, फिर मैंने सोचा ऐसे लगता है कि पागल इतने ज्यादा हो गए कि जो थोड़े बहुत समझदार थे उनको पागल खाने में डाल दिया। भाई इतने जो अच्छा काम करने वाले अंदर बैठे बाहर, तो अच्छे इतने थोड़े बचे कि पागल खाने में उसी को डाल दिया, बाकी सब बाहर घूम रहे। तो स्थिति ऐसी है कि थोड़े बहुत सुनने वाले हैं उनको मंदिरों में बंद कर दिया, बाकी सब बाहर घूम रहे। हरे कृष्ण।
आपके मंदिर में बहुत अशांति है, शांति यही बात
हमारे शांति। हरे कृष्ण। तो क्या चीज आज के है? कल भी हमने नहीं पूछा, तो आज आपको क्या चीज विशेष है? तीसरे प्रश्न में भगवान के अवतार के विषय में पूछा गया, भगवान अवतार लेते हैं हम जन कल्याण के लिए। वैसे